आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
आप सुन रहे हैं SBS Hindi। मेरा नाम है नबील। एक नया दिन, एक नई शाम और एक नई शुरुआत। शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंचरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो आज के शो में सबसे पहली रिपोर्ट है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी। ढाका की एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। क्या है इसकी और इससे जुड़ी और जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील लेक सेंट क्लेयर पर आधारित एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO की एक टीम ने तस्मानिया की सबसे प्रतिष्ठित प्राकृतिक धरोहरों में से एक इस लेक का एक नया रूप सामने रखा है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर तीसरी रिपोर्ट में बात करेंगे घर और सामान के बीमा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का एक एपिसोड है। और आखिर में फैसल फरीद की रिपोर्ट, जिसमें आज बुलाए हैं मुंबई में टैक्सी चलाने वाले 46 वर्षीय पराग पाटिल की कहानी। पराग पाटिल ने हाल ही में कैनबरा में हुए ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स गेम में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 5 मेडल जीते और वो चाहते हैं, अब तक वो 22 मेडल जीत चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये संख्या 100 तक पहुंचे। ये सारी रिपोर्ट्स आपको सुनाएंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं न्यूज फ्लैश। ब्रैड बैटन को हराने के बाद एमपी जेस विल्सन विक्टोरियन लिबरल पार्टी की पहली महिला नेता बनने वाली हैं। पार्टी रूम ने 35 वर्षीय शैडो ट्रेजरर जेस विल्सन का समर्थन किया, जो अपने पहले कार्यकाल की सांसद हैं। सोमवार दोपहर लिबरल एमपीज के एक डेलीगेशन ने ब्रैड बैटन को बताया कि उन्हें पार्टी रूम का समर्थन नहीं रहा। पूर्व पुलिस अधिकारी ब्रैड बैटन एक साल से कम समय तक पार्टी के नेता रहे और उन्होंने पूर्व नेता जॉन पिसेटो की जगह ली थी। वोडाफोन की पेरेंट कंपनी TPG टेलीकॉम ने कहा है कि 000 कॉल कनेक्ट नहीं हो पाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। TPG टेलीकॉम ने बताया कि 13 नवंबर को अपनी जान गंवाने वाला यह व्यक्ति सिडनी का था, जो पुराना सैमसंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था और वो 000 पर कॉल कनेक्ट नहीं कर पाया। 17 नवंबर को न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस ने TPG टेलीकॉम को इस घटना की जानकारी दी, जो सैमसंग डिवाइस पर पुराने लेब्रा सॉफ्टवेयर से जुड़ी थी। TPG टेलीकॉम का कहना है कि कॉल की कोशिश के समय मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा था और कोई आउटेज नहीं था। न्यू साउथ वेल्स सरकार हार्बर ब्रिज और टनल तथा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए वेस्टर्न हार्बर टनल और M6 मोटरवे पर 2-way टोलिंग पर विचार कर रही है। स्टेट प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि यह अतिरिक्त राशि सिडनी की सड़कों पर $60 प्रति सप्ताह के टोल कैप को बढ़ाने में मदद करेगी। ये कैप न्यू ईयर्स डे को खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थायी कर दिया जाएगा। क्रिसमस का कहना है कि सरकार उन सैकड़ों लोगों के लिए इस तरह के बड़े कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ उपाय को खत्म नहीं कर सकती जो वेस्टर्न सिडनी में रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को फंड करने के लिए स्टेट ओन टोलिंग एसेट्स की जरूरत है। लिबरल नेता सुजन ली ने कहा है कि वो साल के अंत तक कोएलिशन की माइग्रेशन नंबर्स कम करने की नीति के बारे में और विवरण देंगी। SBS को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वर्तमान इनटेक बहुत ज्यादा है और माइग्रेशन सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। हालांकि सुजन ली ने यह नहीं बताया कि आने वाली नीति में किन वीजा कैटेगरीज को कम किया जाएगा। एक विशेष ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह सजा पिछले साल छात्र आंदोलन को दबाने के लिए दी गई, जिसमें लगभग 1400 लोग मारे गए थे। इन प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना का 15 साल का शासन समाप्त हो गया। ڈھاکہ استھت انٹرنیشنل کرائم ٹرائبونل نے پورو ہوم منسٹر اسد الزمان خان کو بھی پردرشنکاریوں پر فورس کا استعمال کرنے میں شامل ہونے کے لیے موت کی سزا سنائی۔ شیخ حسینہ اور اسد الزمان خان دونوں پچھلے سال انڈیا بھاگ گئے تھے۔ شیخ حسینہ کا کہنا ہے کہ یہ آروپ غلط ہے۔ ان کا ترک ہے کہ انہوں نے اور اسد الزمان خان نے اچھے ادیشے سے کام کیا اور نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کے مدینہ شہر میں کل ہوئے ایک حادثے میں 42 بھارتی تیرتھ یاتریوں نے اپنی جان گنوا دی، جن میں ایک ہی پریوار کے 18 سدسیہ شامل تھے، ان میں 9 بچے بھی تھے۔ رپورٹس کے انوسار ادھکتر پیڑت حیدرآباد کے تھے۔ مدینہ پہنچنے سے لگ بھگ 30 کلومیٹر پہلے یہ بس ایک ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ دیر رات ہوا جب یاتری سو رہے تھے اور ٹکر کے بعد بس میں آگ لگنے سے وہ باہر نہیں نکل پائے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے ایکس پر ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ اس گھٹنا سے دکھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاض میں بھارتی ایمبیسی اور جدہ میں کونسلیٹ پوری سہایتا دے رہے ہیں اور سعودی عرب کے ادھیکاریوں سے سمپرک میں ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر انڈین کونسلیٹ نے بھی جانکاری دی کہ اس حادثے کے بعد ایک 24/7 کنٹرول روم سیٹ اپ کیا گیا ہے اور ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 800-244-0003 جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا نیوز فلیش نبیل حسن کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ہندی، میرا نام ہے نبیل۔ نیوز فلیش کے بعد چلیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی رپورٹ کی طرف۔ یہ رپورٹ ہے بنگلہ دیش سے جڑی۔ بنگلہ دیش کی پورو پردھان منتری شیخ حسینہ کو حال ہی میں ڈھاکہ کی ایک وشیش عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے۔ کیا ہے اس کے پیچھے کا کارن اور اس سے جڑی اور جانکاری آپ کو ملے گی ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ رپورٹ لے کر آئی ہیں آپ کے لیے ویشالی جین۔
بنگلہ دیش پچھلے کئی دشکوں کے سب سے استھر راجنیتک دور میں پرویش کر چکا ہے۔ پورو پردھان منتری شیخ حسینہ کو پچھلے سال ہوئے چھاتر نیترتو والے آندولن کے معاملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہ اس فیصلے کو پوری طرح سے خارج کرتی ہیں اور اسے اویدھ و راجنیتک روپ سے پریرت بتاتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہیں نشپکش مقدمہ نہیں ملا ہے۔ اس فیصلے سے بنگلہ دیش میں اشانتی بڑھنے کی آشنکا کے ساتھ ساتھ راجنیتک دھروویکرن اور آگامی چناؤں میں عوامی لیگ کے نیترتو کو لے کر انشچتا اور گہرا گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ پورا معاملہ۔ نشکاست 78 ورشیہ پردھان منتری شیخ حسینہ کو ڈھاکہ کی ایک وشیش عدالت نے پچھلے سال اگست میں ہوئے چھاتر نیترتو والے آندولن کے دوران مانوتا کے خلاف اپرادھوں کا دوشی پاتے ہوئے موت کی سزا سنائی ہے۔ ادھیکشتا کر رہے نیایادھیش جسٹس غلام مرتضی موزمدار نے بھری عدالت میں یہ فیصلہ لائیو پڑھ کر سنایا۔
For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death.
مکھیہ ابھیوجک تاجل اسلام نے اس فیصلے کو راجیہ ستہ کے راجنیتک سنرکشن یعنی سٹیٹ پاور کی راجنیتک سرکشا کا انت بتایا ہے۔
2024 سال جولائی ابھیوتھان چلاکالے
The accused Sheikh Hasina has been found guilty of crimes against humanity for killing around 1,400 students and civilians and injuring about 25,000 during the July 2024 uprising in Bangladesh through the use of lethal weapons, helicopters and drones. For these crimes, she has been sentenced to death. If the families of the martyrs feel even a small degree of relief today, that becomes the only victory we seek. We believe this verdict frees the nation from a long-standing culture of impunity.
Sheikh Hasina is samay Bharat mein hai. آن لائن جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے سبھی آروپوں سے انکار کیا ہے اور اس وشیش ٹریبیونل کو اویدھ اور راجنیتک روپ سے پریرت بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نشپکش بچاؤ کا موقع تک نہیں دیا گیا۔
The verdicts announced against me have been made by a rigged tribunal established and presided over by an unelected government with no democratic mandate. They are biased and politically motivated, designed to remove Bangladesh's last elected prime minister and destroy the Awami League as a political force. I wholly deny the accusations made against me. I mourn all of the deaths, but neither I nor other political leaders ordered the killing of protesters. I was given no fair chance to defend myself, nor to be represented by lawyers of my own choice.
वे जोर देकर कहती हैं कि सुरक्षा बलों ने तय प्रोटोकॉल के तहत स्वतंत्र रूप से कार्यवाही की थी और दावा करती हैं कि ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो साक्ष्यों को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया है। अदालत के बाहर आंदोलन से प्रभावित लोग और पीड़ितों के परिजन बैनर और फूल लेकर इकट्ठा हुए। उनमें अब्दुल रब भी शामिल थे, जिनके बेटे मिराज की हिंसा के समय तस्वीरें लेते हुए मृत्यु हो गई थी।
मिराज यात्राबारी 5 अगस्त।
My son went out on August 5th, 2024 to take photographs of the conflict. He was wearing a national flag, proud of his country. When he was under a flyover, police fired from inside the local station, and he was hit with several bullets in the chest. He died on the spot. The verdict pacifies us a little, but justice will only be complete when the sentence is carried out, so the stain on our history is removed forever.
राजधानी ढाका में हसीना के पुराने निवास के बाहर न्याय की मांग करते हुए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की दंगा नियंत्रण पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उनमें छात्रा नौशी नोवार भी शामिल थी।
By any means, we will bulldoze Hasina's house, and then, only then, will we leave.
इस बीच आवामी लीग के समर्थक फैसले को स्वीकार करने के बजाय इसका विरोध करने की मांग कर रहे हैं। आवामी लीग के वरिष्ठ नेता जहांगीर कबीर नानक का कहना है कि अदालत का फैसला अवैध है।
The verdict announced by the court today has been rejected by the people of Bengal. The people of Bengal do not accept this verdict and will not accept it. In protest of this verdict, a nationwide shutdown will be observed tomorrow from morning to evening.
Shutdown palito hobe.
उन्होंने वर्तमान सरकार पर दबाव बढ़ाने की कसम खाई है।
আমরা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই।
We want to state clearly that our movement will continue and become even more intense until the Yunus government steps down.
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता रवीना श्याम दसानी ने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन ये निष्पक्ष मुकदमे के मानकों से समझौता करके हासिल नहीं किया जा सकता।
It's an important moment for the victims of grave human rights violations committed during the suppression of protests last year. While we were not privy to the conduct of this trial, we have consistently advocated for all accountability proceedings, especially on charges of international crimes, to unquestionably meet international standards of due process and fair trial. This is particularly vital when, as was the case here, the trials have been conducted in absentia and led to a capital punishment sentence. We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances.
दूसरी ओर विश्लेषकों का कहना है कि भारत में रहने के दौरान हसीना सक्रिय राजनीति में वापस नहीं लौट सकती। राजनीतिक विश्लेषक ज्योति रहमान का कहना है कि आवामी लीग को अब नए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ सकती है।
It is impossible at the moment for Hasina to come back and lead the Awami League to any of those elections. So that's one political direct political implications. So you know, sort of Awami League would need to find a different leader. You know, whether that would be somebody anointed by Hasina or whether it would be you know, sort of the party basically says that okay, we have to move beyond Hasina, remains to be seen.
मौत की सजा, एक खारिज की जा रही न्याय व्यवस्था, विरोध को और तेज करने का वादा करते हुए समर्थक और करीब आते हुए चुनाव, इन सब के बीच अब बांग्लादेश इंतजार कर रहा है कि अगला अध्याय कूटनीति से खुलेगा या फिर हिंसा की तूलिका कोई नया इतिहास लिखेगी। SBS न्यूज से SML गालिब की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
आप सुन रहे SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील। और आर्ट ब्रेक से पहले आपने सुनी हमारी पहली रिपोर्ट आज के शो की, जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई थी। अगर आप वो पॉडकास्ट फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, SBS हिंदी की वेबसाइट sbs.com.au/hindi, और आपको ये सारा कॉन्टेंट हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, तो ज़रूर उसे फॉलो करिए SBS हिंदी को। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछना है। सवाल यह है कि अभी साल का अंत होने वाला है और दिसंबर के महीने में बहुत लोग इंडिया जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया के अलावा कोई ऐसी कंट्री है जो आपके बकेट लिस्ट में है घूमने की, तो वो कौन सी कंट्री है जहां आप घूमना जाना चाहेंगे? 04397997667 पर मैसेज करिए और हम देखेंगे कि आपके बकेट लिस्ट में वो कौन सी कंट्री है जहां पे आप घूमना जाना चाहते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ, जब तक आपके मैसेजेस आते हैं 04397997667 पर। हमारी अगली रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO की एक टीम ने तस्मानिया की सबसे प्रतिष्ठित प्राकृतिक धरोहरों में से एक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील लेक सेंट क्लेयर का एक नया रूप सामने रखा है। इस अंश में आइए जानते हैं स्थानीय लोग इस झील के बारे में क्या कहते हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है नताशा कॉल।
ऑस्ट्रेलिया में लेक सेंट क्लेयर तस्मानिया के विल्डनेस वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र से घिरी हुई है और लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। ये बैस स्ट्रेट से लगभग दुगनी गहरी है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील बताई जाती है, लेकिन इसका कभी भी पूरी तरह से मानचित्रण यानी मैपिंग नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस झील के पानी के नीचे के परिदृश्य का पहला 3D मानचित्र तैयार किया है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल गहराई की पुष्टि करता है। हर साल हजारों लोग इस झील को देखने आते हैं, लेकिन अब तक इस झील के पानी के नीचे का परिदृश्य एक रहस्य बना हुआ है।
मेरा नाम देवी शर्मा, हम तस्मानिया में तकरीबन ओवर 21 साल से रहते हैं और ये तस्मानिया एक जो स्टेट है बहुत ही सुंदर है और यहाँ देखने के लिए बहुत अच्छा जो है कि जो कि आंखों को इतना सुंदर लगता है कि इसमें आज हम बात करते हैं सेंट क्लेयर लेक का बारे में, जो इतनी सुंदर है। यहाँ पे कितने हमारे लोग मेलबोर्न, सिडनी और ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया वाइड से इधर में इंडियन कम्युनिटी जो आती है वहाँ, हम भी 3-4 दफे विद फैमिली के गए हैं वहाँ। इतना अच्छा दृश्य, आप कभी जाए देखे तो हल्का लेक का कलकल स्वर में जो उसका पानी की धारा है वो बहती है, उधर पहाड़ों का व्यू दिखता है, थोड़ी सी बर्फ हो जाती है और इतना अच्छा लगता है। और सेंट क्लेयर लेक के अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट वो एक बहुत अच्छी सुंदर लेक है। हमने यही सुना है कि डीपेस्ट लेक है, लेकिन ऐसा ट्राई नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा स्विमिंग हल्का फुल्का हम कर लेते हैं, बट इतना डीप पर थोड़ा सा देखो डर तो लगता ही है।
CSIRO के हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर ऑगस्टिन डेप्लॉन्ट ने हाल ही में एक टीम का नेतृत्व किया है जिसने पहली बार इस झील के तल का मानचित्रण किया है।
When I saw that the deepest lake in Australia had never been surveyed with a multi-beam, yeah, I was very surprised, but I guess if it was easy to do, it would have already been done.
ऑगस्टिन की टीम ने 9 दिन तक झील के तल का मानचित्रण करने के लिए मल्टी बीम सोनर का उपयोग किया।
Basically, it's just as if we emptied the lake of its water and were walking around and were mapping it out. So I think it's going to be quite fascinating.
उनके काम से इस झील के पानी के नीचे का ऐसा परिदृश्य सामने आया है जो पहले कभी नहीं देखा गया।
We can see the input of fresh water basically coming into the lake from the mountains and it's carving through the lake floor. So we have this waterfalls basically coming down into the lake and then you know reaching the cliffs. It's pretty incredible to look at, and you can see the trees as well sometimes overhanging these areas. It's quite spectacular.
Michael Krogan लगभग 20 वर्षों से इस झील के दक्षिणी छोर पर एक लॉज चलाते हैं। वे कहते हैं,
Personally, I would describe the lake as my church. It is the most peaceful place on this planet. And I may be biased, but so many of the people are saying the same thing. Visually stunning, never the same 2 days in a row. The most phenomenal place to swim, because it's, as I said, it's the cleanest air and there's cleanest water in the world.
वे अपनी लॉज के बार में जिन की एक विशेष बोतल रखते हैं, जिसे कुछ वर्षों पहले शोधकर्ताओं की एक अलग टीम ने झील के तल तक ले जाकर एक तस्वीर में उतारा था।
Just for giggles one night, I said to them, would you take a bottle of gin, put it on the bottom of the lake and take a photograph? And they're like, yeah, sure. So I'm like, okay, great. So they did.
माइकल बताते हैं कि ये बोतल चाहे झील के सबसे गहरे तल तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी 100 मीटर से अधिक गहराई तक जा चुकी है।
They did the best they could, but they brought the bottle back and it just sits behind the bar. It's now been depth tested. I think that was about 120 meters.
और ऑगस्टीन डेप्लॉन्ट का कहना है कि मैपिंग से पता चलता है कि लेक सेंट क्लेयर झील का सबसे गहरा बिंदु लगभग 163 मीटर है।
So it's about towards the south on the western side, just in the corner basically. We can almost see the glacier would have really grinded through that corner.
इस झील का मानचित्रण ओटर नामक एक जहाज ने रिमोटली पूरा किया और इसका संचालन रिसर्च इंजीनियर डॉक्टर हुई शेंगलिम द्वारा किया गया।
We can go really shallow into regions like less than 2 meters, even less than a meter as well, as long as there's no like hidden rocks or anything underneath the surface. So those are the areas where the big vessel won't be able to get to. What we are trying to do is like mapping the shallow region so you can actually see how the contour changes along the shoreline, and you'll see how quick the depth actually dropped from the shoreline like all the way down to 50 meters. Like you can see a meter here, and then next moment you are in a 10 meter zone, and next moment you are already in like 30 meter, 50 meters deep. One of the most useful features is we'll be able to autonomously finding those gaps and finding the best way to cover those missing gaps in our data sets.
Hobart में रहने वाले परमिंदर जीत सिंह हमें बताते हैं।
मैं होबर्ट में पिछले 9 साल से रह रहा हूँ। लेक सीट क्लेयर जो है, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक विद द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये जो, एंड इट इज सिचुएटेड कैडल माउंटेन में है, विच इज अगेन एंशियंट ग्लेशियर्स एंड मिस्टी फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय जो है अल्पाइन पीक्स
जी।
It is the deepest जो है लेक, फ्रेश वाटर लेक है। ये एक शीशे की तरह साफ है और वाइल्डनेस जो इसके सराउंडिंग है जो इसकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। इट इज लाइक ऑलमोस्ट enchanted एटमोसफेयर अराउंड द लेक। तस्मानिया के हिसाब से इट्स वेरी मच इंस्पायरिंग एंड ट्रैंक्विल वाइल्डनेस इसका ट्रेजर है।
अब शोधकर्ताओं ने एक डाटा एकत्रित किया है जो सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे लेक सेंट क्लेयर के आगे के अध्ययन को बल मिलने की उम्मीद है। इसमें गहराई में क्या पाया जा सकता है ये भी शामिल होगा। SBS न्यूज से कैरन थॉमस की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और नताशा कॉल की ये जो रिपोर्ट थी, अगर आप इसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं sbs.com.au/hindi, या आपको ये सारा कंटेंट हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का ये एपिसोड है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि घर और सामान के बीमा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है अनीता ब्रार।
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
ऐसी घटनाएं जो आपके घर या सामान को खतरे में डाल देती हैं, उनके बारे में सोचना सुखद तो नहीं होता, लेकिन ये असामान्य भी नहीं है। बाढ़, जंगल की आग, तूफान, चक्रवात जैसी मौसमी घटनाएं ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में जीवन का एक नियमित हिस्सा हैं। और अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं तब भी आप पानी से होने वाले नुकसान या चोरी जैसी चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में हमारे विशेषज्ञ घर और सामान के बीमा की जरूरी बातों को समझा रहे हैं, जैसे कि ध्यान देने योग्य बारीकियां और बढ़ते प्रीमियम के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ये सब इसमें शामिल है और एसपीएस हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। चाहे आपका अपना घर हो या किराए का, गृह बीमा एक ऐसी चीज है जिस पर विचार करना आवश्यक है। चॉइस के बीमा विशेषज्ञ जोडी बर्ड बताते हैं कि गृह बीमा यानी होम इंश्योरेंस से हमारा क्या तात्पर्य है।
होम इंश्योरेंस इज रियली टू कंपोनेंट्स। यू हैव गॉट द इंश्योरेंस फॉर योर बिल्डिंग एंड द इंश्योरेंस फॉर योर कंटेंट्स। एंड इफ यू ओन योर ओन होम ऑर द बैंक ओन्स योर होम, आइडियली यू आर इंश्योरिंग बोथ। इफ यू आर रेंटिंग अ प्लेस और इफ यू आर इन अ स्ट्राटा प्रॉपर्टी, देन यू जस्ट वांट टू इंश्योर योर कंटेंट्स। When it comes to insuring your home, you're insuring for the cost to rebuild the actual building. And when you're insuring your contents, you're insuring the cost to actually replace those contents.
तो contents किसे कहते हैं? इसमें electronics, खेल उपकरण, आभूषण, चिकित्सा सहायता, संगीत वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि फर्नीचर और कपड़े भी शामिल हो सकते हैं। मूल रूप से कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसके लिए आप चोरी या क्षति की स्थिति में सुरक्षा चाहते हैं। जब आप होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मिलता है। ये दस्तावेज बताता है कि आपकी पॉलिसी क्या क्या कवर करती है और क्या नहीं करती। बर्ड कहते हैं कि एक सामान्य अपवाद जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते तब लागू होता है जब आपका घर लंबे समय तक खाली रहता है।
If you're going on holidays for an extended period of time, so often 60 days or more, you actually need to tell your insurer because they might not cover you if you're away for too long. And that also goes, for example, if you've moved out of your home while it's being renovated.
ज्यादातर पॉलिसियां पालतू जानवरों से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती।
Most home insurance policies will cover you for animal damage, but they won't cover you if it's your own pet that has done the damage. So if you have a dog that doesn't like storms and it tears the house apart when you have a storm, then you're not going to be covered because it's your own pet, but you will if a possum came in the house and wrecked everything.
एंड्रू हॉल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं। उनकी सलाह है कि संभावित घर खरीदार वित्तीय विकल्पों पर विचार करते समय बीमा विकल्पों की भी तुलना करें।
So it's important when you buy a home in Australia that you also consider the costs and the options for insurance. Your insurance should always cover what is the most likely risk of something happening to your home. If you're living in an area where there is a lot of bush or forest, you need to ensure that you've got cover for fire. Flood is the biggest challenge, and you should always check with the real estate agent, with the local council, when you're purchasing a property, what the risks are around flood, because flood is the most expensive element to insure.
हॉल बताते हैं कि अन्य प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ एक बेहद पूर्व अनुमानित जोखिम है। घर खरीदते समय वो सलाह देते हैं कि पहले से ही उन प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों पर शोध कर लें जिससे वो प्रभावित हो सकता है, जिसमें बाढ़ का जोखिम भी शामिल है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में रणनीतिक प्रबंधक की प्रोफेसर पाउला जार जबकोस्की आपदा बीमा और डिजास्टर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप्स में वैश्विक विशेषज्ञता रखती हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 11% घरों का बीमा नहीं है और कुछ इलाकों में तो बीमा ना होने की दर और भी अधिक है। प्रोफेसर जार्ज जबकोस्की इसके मुख्य कारण बताती हैं कि कुछ लोग खुद को इस जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं समझते और कुछ के लिए affordability की समस्या है।
Some people, for example, may not perceive themselves as prone to that risk and so may not buy
Other people who may be prone to those risks can't afford it because the cost has gone up. And yet others are finding that insurance companies are declining to quote them when they're in high-risk areas, which means it's unavailable.
ऑस्ट्रेलियन सांख्यिकी ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत में बीमा प्रमुख है, जो घर और घरेलू सामान बीमा के लिए उच्च प्रीमियम के कारण है। भले ही आप पूर्ण आपदा बीमा का खर्च वहन न कर सकें, फिर भी बुनियादी कवरेज लेना एक अच्छा विचार है। प्रोफेसर जॉर्ज एवकॉस्की बीमा पर कटौती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए परिवारों को कुछ सुझाव देती हैं।
So if you're in an area where you know that you may potentially get an evacuation, what are the things you will take with you? Have you got everything online that you can have online, like documents that matter to you? The other thing is protect your house as well as you can. Do you clean your gutters? Do you check your valves? Those kinds of things, because they can stop washback flood, overflow flood from your gutters and drains. They're also helpful around fire because, you know, you don't have a lot of leafage in the gutters. Are you making sure that you look after the trees that are around your house so that they don't fall onto the house in a heavy wind?
बीमा अनुबंध लंबे हो सकते हैं और अक्सर उसमें ऐसी शर्तें होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, इसलिए सवाल पूछना और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपको ठीक ठीक पता हो कि क्या कवर किया गया है और क्या नहीं। चॉइस के बीमा विशेषज्ञ जोडी बर्ड का कहना है कि अंततः हमेशा ही इधर उधर पता लगाना, अच्छी डील के लिए बातचीत करना फायदेमंद होता है, तब भी जब आप सिर्फ अपना बीमा नवीनीकृत कराना चाहते हो।
Intuitively, we think that if we're loyal to a business, they're going to reward us with discounts. This isn't how it works with insurers. So if you're speaking to your insurer about trying to get a better deal, your hand is always going to be stronger if you've done that background work to understand what the premiums are like elsewhere on the market. You can give them a call and say, you know, are you going to give me the price for a new customer? Otherwise, I'll move on.
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और अब बढ़ते हैं अपने शो की आखिरी रिपोर्ट की तरफ। लेकिन अगर आपको आज के शो का कोई भी रिपोर्ट पसंद आई है जिसे आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं, जहां आपको ये सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे और आप उन्हें आराम से अपनी मर्जी से जब चाहें सुन सकते हैं। आप हमारे SBS हिंदी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसमें आपको ढेर सारा कॉन्टेंट, रील्स, सब कुछ मिलेगा और कम्युनिटी के इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए ये बढ़ते हैं आखिरी रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट फैसल फरीद लेकर आए हैं। 46 वर्षीय पराग पाटिल की कहानी, जो वेटरन मास्टर्स इवेंट्स में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वो अब तक 22 मेडल जीत चुके हैं और आगे चलकर 100 मेडल्स तक जीतना चाहते हैं। मुंबई में ये टैक्सी चलाते हैं। आइए सुनते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी फैसल फरीद की आवाज में।
मुंबई में टैक्सी चलाने वाले पराग पाटिल ने अभी ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स गेम्स, जो कैनबरा में अक्टूबर 18 से 25 के दौरान हुए थे, उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 5 मेडल जीते। 46 वर्षीय पराग शुरुआत में कभी बस के पीछे भागते थे और छोटी मोटी नौकरी करते रहे, लेकिन अपने जुनून को कभी नहीं भूला। भले वो समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अवसर पा सके, लेकिन वो अब वेटरन मास्टर इवेंट्स में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अब तक वो 22 मेडल भारत के लिए जीत चुके हैं और आने वाले समय में इस संख्या को वो 100 तक ले जाने के लिए उम्मीद और मेहनत दोनों कर रहे हैं। आर्थिक तंगी, अभाव और रोजमर्रा से जूझते हुए पराग यहाँ तक कैसे पहुंचे वो बताते हैं।
मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है जलगांव। मेरे पिता वेल्डर थे थर्मैक्स कंपनी में, इसके कारण मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप टू पुणे हुआ। मेरी सारी स्कूलिंग जो है या एजुकेशन जो है वो सारा का सारा पुणे में हुआ था। एंड 41 इयर्स मैंने पुणे में मेरा रहना हुआ है। उसके बाद में 5 साल पहले, मतलब जस्ट बिफोर लॉकडाउन, मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था। तो स्कूलिंग मेरी हुई है HS स्कूल पिंपरी से, हिंदुस्तान एंटोबायोटिक स्कूल पिंपरी। उसके बाद में मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज, मतलब अभी का रामकृष्ण मौर्य कॉलेज, वहाँ पे हुई है। एंड फिर उसके बाद में खेल मैंने शुरू किया था दो जब मैं 10 साल का था, 1988 में, अक्टूबर 1988 में मैंने मेरा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस आप बोलते हो या वो मैंने शुरू की थी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, इंटर स्कूल्स वगैरह। उससे पहले मैं था रनर बिहाइंड द बस, तो बस के पीछे भागते भागते मेरे जो टीचर थे पांडुरे सर और महाजन सर, उन्होंने मेरी ये खूबी पहचानी। और उसी साल मेरा इंटर क्लास जो होता है उसमें मुझे मेरे ख्याल से 40 मीटर या 50 मीटर की रेस थी, उसमें मुझे पहला गोल्ड मेडल मिला था। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में जब स्कूल कॉलेजेस में स्टेट नेशनल लेवल तक खेला, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का चांस तभी नहीं था और मैं जाना चाहता था डिफेंस फोर्सेस में, बट किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। शायद ऐसे होगा कि मेरी जो देश सेवा है वो खेल के माध्यम से हो, इसीलिए मेरा मिलिट्री में चुनाव नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया हुआ है केमिस्ट्री में, फर्स्ट क्लास है पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ एनसीसी में मैं नेशनल लेवल का कमांडेशन मेडल होल्डर हूँ, गोल्ड मेडल होल्डर भी हूँ।
वैसे ये मास्टर्स गेम्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी थोड़ा कम है, लेकिन समय के साथ अब ये भी विश्व में आयोजित हो रहे हैं। पराग इन गेम्स के बारे में बताते हैं।
इसमें जो आयु वर्ग होता है मिनिमम 30 है। मैं ये एक्चुअली इसकी हिस्ट्री बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक मिनट में मैं इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। 1985 इंटरनेशनल मास्टर्स गेम एसोसिएशन, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इन्होंने ये तय किया कि एक मास्टर गेम शुरू की जाए जिनकी आयु 40 साल के ऊपर है, मतलब 1985 में। तो जो एक्स ओलंपियंस है, एक्स वर्ल्ड चैंपियंस है या एक्स एशियन प्लेयर्स है, एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो एज की वजह से समर ओलंपिक्स से मेन ओलंपिक्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको जस्टिस देने के लिए ये मास्टर गेम्स शुरू किए गए। तो पहले इनकी मिनिमम आयु थी 40 साल, अभी वो जैसे समय बीतता गया तो इसकी अभी मिनिमम आयु है 30 साल, और मैक्सिमम एज अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं 99 ईयर्स ओल्ड न्यूजीलैंड एथलीट को मैं मिलके आया हूँ। तो अपर एज कुछ भी नहीं है इसमें, आप 105 साल हो, आप 110 साल हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसकी खासियत है जो भी ओलंपिक्स में जो गेम्स हैं वो सारे के सारे गेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं।
पराग की शुरुआत तो वैसे स्कूल के समय ही हो गई थी, लेकिन समय अनुकूल न होने के कारण आरंभ में कुछ खास नहीं कर पाए। इनके पिता एक वेल्डर थे जिससे घर में बहुत संपन्नता नहीं थी। उसके बाद उनको जिम्मेदारी उठाने के लिए छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। फिलहाल पराग कौन कौन से गेम्स खेल रहे हैं और क्या हालात रहे हैं इसके बारे में वो बताते हैं।
आर्थिक तंगियों का सामना तो पहले से ही करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी वेल्डर थे, तो वेल्डर की तनख्वाह, फिर पूरा फैमिली का बोझ, हम दोनों की पढ़ाई, मैं और मेरे भाई की पढ़ाई, रिश्तेदारों को देखना वगैरह, उन सबसे पापा को जो स्पोर्ट्स हैं उसके लिए उतना इन्वेस्टमेंट या फिर मुझे उतना आर्थिक लाभ नहीं हो पाया। फिर जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी फैक्ट्रीज में। फिर उसके बाद में फिर भी मेरे अंदर का जो प्लेयर है वो मरा नहीं, या उसको जिंदा रखा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं कंपनी के काम करते करते मैं खेलने लगा। बेसिकली मैं एथलीट हूँ, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, स्प्रिंटर और जंपर। मैं 60 मीटर रन, 100 मीटर रन, 200 मीटर रन, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, ये मेरे इवेंट है, इससे मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। फिर जैसे ही मुझे 2013 में इटली में जो सीनियर ओलंपिक्स मतलब वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुए थे, उसमें मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया की तरफ से, एक एसोसिएशन की तरफ से। तो तभी मैंने कंपनी में जाके मैंने ये सिलेक्शन लेटर्स वगैरह दिखाए तो उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया. तो तभी एक मैंने जॉब छोड़ दी एंड फुल टाइम अभी 2013 से लेके 2025 तक मैं फुल टाइम स्पोर्ट्स में ही हूँ. छोटी मोटी नौकरियाँ करना या छोटे मोटे बिजनेसेस करना, ट्रेनिंग देना, ये सबसे मैं मेरा गुजर बसर कर रहा हूँ. एंड आज की डेट में मैं लगभग एक से सवा साल से मैं मुंबई की सड़कों पर टैक्सी ड्राइवर हूँ. ओला और उबर चला के मैं अपना घर चलाता हूँ.
अब तक पराग 7 इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग ले चुके हैं. इनमें वो कुल 22 मेडल जीत चुके हैं. सबसे लेटेस्ट अभी अक्टूबर में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स गेम्स कैनबरा में अक्टूबर 18 से 25 हैं.
मैंने टोटल 7 इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने पार्टिसिपेट किए हुए हैं. पहला इवेंट मेरा था फर्स्ट वेटरन्स एथलेटिक चैंपियनशिप, फर्स्ट इंटरनेशनल वेटरन्स एथलेटिक चैंपियनशिप जो बालीवाड़ी पुणे में हुई थी. वहां पे मुझे 3 सिल्वर मेडल मैंने जीते थे. उसके बाद में वर्ल्ड मास्टर गेम्स यानी सीनियर ओलंपिक्स 2013 टोरिनो इटली, वहाँ पे 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज. फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन मास्टर गेम्स 2015 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, 2 गोल्ड 2 सिल्वर्स. वर्ल्ड मास्टर गेम्स सीनियर ओलंपिक्स ऑकलैंड न्यूजीलैंड 2017 1 सिल्वर मेडल. एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स 2018 पेनांग मलेशिया 1 ब्रॉन्ज मेडल. ऑस्ट्रेलियन मास्टर गेम्स 2019 एडिलेड 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज. ऑस्ट्रेलियन मास्टर गेम्स 2025 कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया 2 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज. ऐसे टोटल 4 गोल्ड 12 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज. ऐसे मैंने आज तक इंडिया के लिए 22 मेडल्स जीते हुए हैं.
आज पराग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया हो लेकिन आज भी वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करते हैं. इसी से बचाकर वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं. भविष्य में वो अन्य खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं.
आगे मेरा प्लान है, मेरा खुद का ड्रीम है 100 मेडल्स फॉर द कंट्री. अभी 22 हुए हैं, सिर्फ 88 बाकी है. उसके बाद में मेरा कोचिंग का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लेकिन फंड्स की वजह से मैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ. तो मेरा जो विजन एंड मिशन है, मेरा खुद का तो 100 मेडल का है एंड मैं ऐसे एथलीट तैयार करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ जो 2032 के बाद अपने देश के लिए ट्रैक एंड फील्ड में जो सबसे ऊपर है आज, और ओलंपिक्स का भी मेडल टैली ट्रैक एंड फील्ड के ही ऊपर डिपेंड होता है, उसमें मैं अपने एथलीट भेजकर देश के लिए वो मेडल जीत पाए, ये मेरी इच्छा है. उसके लिए होता है कि जो हम अर्न करते हैं उसमें से हम लोग सेविंग करते हैं. कुछ मैं क्राउड फंडिंग करवाता हूँ और काफ़ी सारे लोन्स भी मैं ले चुका हूँ ये 22 मेडल जीतने के लिए. तो ये हमारा स्केड्यूल होता है देश के बाहर जाके देश के लिए मेडल जीतने का फंडिंग का अरेंजमेंट.
सच है, अगर जज्बा और जुनून हो तो फिर कोई बाधा आपको अपनी मंजिल से रोक नहीं सकती है. लखनऊ से फैसल फरीद.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील. शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जल्द मिलेंगे और फिर से बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे रिपोर्ट सुनेंगे और कुछ नए गाने भी लेकर आएंगे. SBS हिंदी पर आप सुन रहे थे मुझे, मेरा नाम है नबील.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.